इसके बाद आप देखिए कि वैस काल रब्बु कलिल मलाइका तिन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ये तो अल्लाह ताला का कलाम था। इसको आप ऐसे कर दीजिए, बेशक कौमा में कर दीजिए या किसी ऐसे तरीके से जिससे थोड़ी सी बात आगे चले। फरिश्तों का रिस्पॉन्स सुनिएगा, कालू, वो कहने लगे, कौन सब जमा में है फरिश्ते, आ क्या तजअलू, तू बनाता है, क्या तू बनाता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या कहा, जाइल, तो फरिश्ते ये सवाल ऐसे भी कर सकते थे, अंत जाइलुन, जुमले पे गौर करेंगे ना फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में कही कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा क्या जालू या जाल तू, अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज जाइल बनाया, लेकिन फरिश्ते क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं कहा काला अंत जाइलुन फीहा, नहीं, कालू अतजअलू फीहा, यानी इसमें एक आजजी है। फरिश्तों के इस सवाल में बज़ाहर हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग दिख रही है, किसी के सवाल पर एतराज़, जिसको आप उर्दू में कह लें, लेकिन अंदाज वेरी हम्बल, बहुत ज़्यादा, आ क्या था चलो तू बनाता है फी हा इसमें, मैं युफसिदु, जो के फसाद करेगा फी हा इसमें। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि फी हा से क्या मुराद है, हा दो दफा हा आया, हा से मुराद शाबाश अल अर्द है, अर्द अर्ज जमीन, तो अरबी जुबान में जमीन और आसमान, अर्द और समा, ये मुअन्नस होते हैं। हम तो कहते हैं ना जमीन घूमती है, हमारे उर्दू में जमीन मुअन्नस है और आसमान ठहरा है, हमने वैसे ही वो मेल फीमेल का तो जोड़ा बना दिया ना, अरबी जुबान में जमीन और आसमान दोनों मुअन्नस है, तो हा की जमीर किधर गई, इधर जमीन की तरफ। कहने लगे आ तजलू, क्या तू बनाता है फीहा इसमें, यानी जमीन में, मन उसको, ये मन कौन है, आप ये छोटी छोटी जमीरें अपने पारे में लिख लिया करें, कभी भी नहीं भूलेंगे, यहाँ मन से कौन मुराद है, आदम तो है, आयत के हिसाब से कौन है, खलीफा, इंसान की बात ही हो रही है। देखिए मजे की बात, देखिए अभी तक आदम का तस्करा नहीं है, ये भी नहीं बता वो खलीफा जिन है कि इंसान है कि फरिश्ता है, नोट करिए, ये सारी चीजें नोट करने के काबिल होती हैं। आदम का जिक्र कोई नहीं, इंसान का जिक्र कोई नहीं, जिन का जिक्र कोई नहीं, फरिश्ते का जिक्र कोई नहीं, कोई और मखलूक नहीं है, बस कालू अताजलू, क्या तू बनाता है फीहा इसमें, मैं युफसिदु फीहा, जो फसाद करेगा इसमें यानी जमीन में, वह यस्फिकु दिमा, और बहाएगा खून को, बहाना सफीका का जो लफ्ज है ना, ये बहाने के लिए, टुपोर के मानों में, अरबी जुबान में बहने और बहाने के लिए बहुत सारे लफ्ज आते हैं, लेकिन सफीका का जो लफ्ज है ना, खून के और पानी के बहाने के लिए आता है। खैर, क्या तू बनाता है जो उसमें खून बहाएगा, वह नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, और हम जबके, यानी नाहनु की जरूरत फिर नहीं थी, ये भी आ सकता था, वह नुसब्बिहु बिहम्दिक वह नुकद्दिसुलक, राइट, लेकिन यहां तकरार है, वह नाहनु, और हम नुसब्बिहु, हम ही तस्बीह करते हैं, बिहम्दी का तेरी हम्द के साथ, व नुकद्दिसुलक, और हम तकदीस बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं तेरी। ये जो लफ्ज है ना सब्बहा, सब्बिही, सब्बहा या जो सब्बिह, इसका मानी क्या होता है, टू फ्लोट, ऐसे फ्लोट, तैरना लिखिए। अच्छा, जब आप पढ़ते हैं मसा, आपके पास तस्बीह है, जैसे अगर ये मिसाल है कि तस्बीह हो, तो क्या पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये जो मोतियों का गिरना है ना, ये उस कैफियत को यहाँ सब बहा कहा गया, यानी बहना, ऐसे एक फ्लुएंसी होती है उसके अंदर, तो हम तस्बीह करते हैं बिहम्दी का, वनुकद्दिसु, लफ्ज़ युकद्दिसु या कुद्स का लफ्ज़ कभी पढ़ा आपने कहीं पहले भी, कुद्स मकामे मुकद्दसा, जी शाबाश, वही लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ दिमा है ना, ये दम की जमा, कभी सुना है आपने पहले उर्दू में, एक तो दम होता है ना जो लोग दम करते हैं, ये वो दम नहीं है, दम देना, हज पे गए बाल टूट गया, क्या कहते हैं, दम दे दो, वो दम क्या होता है, ऐसे देखिए, स्लॉटर, कुर्बान करते हैं तो खून निकलता है ना, तो दम कहते हैं खून को, ब्लड को। कुरान पाक में भी आता है, नुस्की को मिम बैनी फरसिम व दमिन लबनन, क्या हम तुम्हें गोबर और खून के बीच में से दूध पिलाते हैं, ठीक है। और ये जो लफ्ज आ गया ना नुसब्बिहु और नुकद्दिसु, इसमें थोड़ा सा फर्क है, नुसब्बी है तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह सब्बहा, कोई अगर आपको उर्दू में एक लफ्ज दे देना, लफ्ज टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखो सब्बहा का, क्या लिखेंगे तर्जमा, सब्बहा या सबहा से भी आ सकता है, उस एक शख्स ने तस्बीह बयान की, यानी इतना लंबा तर्जमा आएगा इस एक लफ्ज का, बात समझ गए। नुसब्बिहु, हम सब तस्बीह बयान करते हैं। नुकद्दिसु, पाकी। तस्बीह के लिए अमूमन जुबान इस्तेमाल होती है, राइट, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक होती है तस्बीह जो जुबान से बोली जाती है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एक और तस्बीह है, और वो क्या है, अमल की तस्बीह। अभी आपको फर्क दोनों का बताती हूँ, थोड़ा सा आगे चलिए। खैर, हम तस्बीह बयान करते हैं तेरी, इधर फरिश्तों का कलाम पूरा, आप चाहें तो इधर कॉमा कर दें या दूसरे रंग से हाईलाइट करके आगे चलिए। काला, फरमाया किसने, इन्नी आलमू, बेशक मैं जानता हूँ, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ये किसका अब कलाम आ गया, अल्लाह सुबहाना तला का आ गया। अल्लाह तला कहते हैं कि तुमने अपना शुबा जाहिर कर दिया है, लेकिन मैं इसका जवाब बेहतर तरीके से जानता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। थोड़ी सी हम इस कन्वर्सेशन पे बात करते हैं। आप देखिए, जरा इस आयत पे ही नजरें गाड़े रखिए, मेरा दिल नहीं चाहेगा कि आप आयतों से इधर उधर हों। ये कुछ इस किस्म की कैफियत नहीं लगती कि सवाल पूछा किसी ने आपसे पानी के बारे में, तो जवाब दे दिया आपने टमाटरों का, क्या मतलब। एक तरफ है खून बहाना, ठीक है ना, फरिश्तों ने इंसान के बारे में जो गुमान पेश किया था वो क्या था कि ये खून बहाएगा, आप कह लीजिए फसाद करेगा। इसके जवाब में फरिश्तों ने अपनी खूबी क्या बतानी थी, देखिए जरा सवाल को। इंसान खून बहाएगा और मस्तियां करेगा, तो फरिश्तों को ये नहीं कहना चाहिए था लेकिन हम बड़े अमन वाले हैं, नहीं समझ रहे ना। देखिए, जब एतराज जो आदम पे ये है कि ये तो खून बहाएगा और बैठ के बस ये लोगों में फसाद ही फैलाता रहेगा, तो फरिश्तों को क्या कहना चाहिए था कि अल्लाह वो तो मैं युफ सिदु फी हा व यस्फिकुद्दिमा हा व नाहनु मोमिनून, हम बड़े अमन वाले हैं। फरिश्तों ने ये तो नहीं कहा, यानी लिखिए कि सवाल जो प्याज और जवाब टमाटर वाली बात लग रही है कि भाई तल्लक क्या दोनों का आपस में, खून बहाने का और तस्बीह करने का आपस में रब्त क्या है। तो याद रखिए कि तस्बीह करना अमन का जरिया है। इस्लाम ने यहां आपको एक सोच दे दी कि नमाज तस्बीह है ना, अल्लाह तआला की इबादत, जिस तरह भी हम करते हैं तस्बीह, तस्बीह करने वाले इबादत गुजार लोग ये अमन का जरिया होते हैं किसी सोसाइटी में। अगर तस्बीहें, नमाजें, रोजें, तरावियां, मस्जिदें, उमरे, हज करने के बावजूद दीनदार लोग झगड़े ना छोड़ें और फसाद फैलाएं, तो उस तस्बीह का फायदा नहीं। इसमें इशारा दे दिया गया कि दीन का काम क्या है, कि नफरतें ना फैलाओ, झगड़े ना करो, फिरका वारियत को प्रमोट ना करो। देखिए, याद रखिएगा एक बात, रूहानियत खामोशी का नाम है, आज शुरू में भी मैंने जिक्र किया आपसे। दीनदार पता कौन होता है, ठहरा पानी, पुरसकून, वो चीफ मेकर या कह लीजिए कि सुलह मेकर या फसादी, ये लफ्ज बड़े बड़े हैं, कम से कम उस शख्स के अंदर एक ठहराव होता है। किसी को आप दीनदार कहें और वो किसी दूसरे ही दीनदार के बारे में जाकर बुरा कमेंट दे देता है ना, तो मान लीजिए ये यस्फिकुद्दिमा और युफसिदु फीहा की दलील बन जाएगा, ये पता चलता है। दूसरी बात भी एक और पता चलती है कि तस्बीह करना सिर्फ इंसानों का ही काम नहीं है, फरिश्ते भी करते हैं। और सूरत हदीद पढ़ लीजिए शुरू में, तो क्या है, सब्बहलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, सब करते हैं। सूरत बनी इसराइल में एक आयत आएगी, बस नाम लिख लें सूरत का, कि अल्लाह ताला कहते हैं सारी मखलूक तस्बीह करती है लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं जानते। मिसकंसेप्शन क्या है हमारी इस आयत के ऊपर, कि हम जुबान की तस्बीह के आदी हैं लेकिन अमल की तस्बीह का हमें पता ही नहीं है। अल्लाह ताला कहते ली मत कुलू नमा ला तफलून, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को पेश किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 2000 पहले जमीन में जिन्नात रहते थे, उन्होंने जमीन पर तरह तरह के फसाद किए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक गिरोह को जिन्नात को डराने और उनको सजा देने के लिए भेजा। फरिश्तों ने जिन्नात को मारकर दरियाओं के किनारों और जजीरों में निकाल दिया। اب بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر فرشتوں نے اسی قیاس پر یہ بات کہی کہ جنات کی طرح بنی آدم بھی زمین پر فساد پھیلائیں گے. تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ نمبر ایک, جنات کے حالات پہ قیاس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ خلیفہ سے بھی ان کو شک ہو گیا کہ خلیفہ میں پھر کوئی نہ کوئی تصفیہ کا معاملہ ہوگا. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فساد ان فی الارض سے یہاں کیا مراد ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, اتنے میں کوئی بچہ باہر سے آئے اور سارے اسکول میں کھانا بکھیر دے, مثال ہے, یا مٹی پھینک دے, یہ کون سا فساد ہے؟ اس کو کہیں گے حسی فساد. پہلا فساد کیا؟ حسی, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈس آرگنائزڈ, چیزیں بکھری پڑی ہیں, ادھر چیزیں ادھر چیزیں, پتہ نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک فساد یہ ہوتا ہے, یہ بہت سب کو دکھتا ہے. لیکن ایک دوسرا فساد ہوتا ہے, نظر کچھ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ان کی سڑکیں بڑی صاف, ادھر گٹر نہیں بہتے, بٹ وہ فساد کون سا ہے؟ فکری فساد, سوچوں کا فساد, جو چھپا ہوا ہے, حسی اور مانوی. دوسرا کہ مانوی, بس میں بچوں کی سوچ بدل رہی ہے, الحاد آ رہا ہے, شرک آ رہا ہے, غیر محسوس طریقے سے بے حیا بنایا جا رہا ہے. تو یہ دونوں فساد انسان کی ہو تھی اور فرشتوں نے یہ بات بتا دی. اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اتنی بات واضح ہو گئی, ایک ڈائلاگ ہے نا, آگے چلیے بات ختم. یہاں تھوڑی سی بات کر دوں کہ فرشتوں کا یہ سب کچھ کہنا کیا بتاتا ہے. اب بڑا باریک نقطہ ہے آپ کے لیے بھی, کون کہہ رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ امیجینیشن میں لائیے, ایک کلاس روم ہے, سپیکر ہیں کوئی, انہوں نے ایک پلان پیش کیا, آڈینس میں سے ایک شخص سوال پوچھ رہا ہے. کیا پتا چلا؟ فرشتے اللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو آج کسی عالم سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا, کسی دیندار سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. مثلا استاد پڑھائے تو کیا اسٹوڈنٹس کا حق نہیں ہے کہ سوال پوچھیں؟ یہ یہاں ایک نقطہ ہے باریک, تو جواب لکھیے گا. دیکھیے سوال پوچھنا ایک سٹوری ہے, سوال پوچھا کیسے ہے یہ دوسری کہانی ہے. آپ میں سے سب نے یہ قصہ پہلے کہیں نہ کہیں پڑھا سنا ہوا ہے نا, اس لیے اگر میں اگلی بات کو یہاں تھوڑا سا کوٹ کر دوں تو آپ کو پرابلم تو نہیں ہوگی نا. فرشتوں نے سوال بھی پوچھا اور ادب سے پوچھا. آتا جلو فی ہا میں یوسدو, یا تو اعتراض کر دیا جاتا نا, دیکھیے صرف لفظ آ کو نکال دیں. آپ ذرا پھر واپس آئیے اپنی آیت کے اوپر, قالو آ کو نکال دیں, الف جو لگی ہوئی ہے. آپ پڑھیے ذرا کیا بنتا ہے, میں ٹون چینج کر کے بتاتی ہوں آپ کو, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ابھی فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو اتجل فیہا من یفسدو, کیا آپ بناتے ہیں, یعنی عاجزی ہے, اور آ کو نکال دیں تو آپ ذرا ٹون بدلوں. قالو تجل فیہا من یفسدو فیہا, صرف اس الف نے عاجزی پیش کر دی, تجلو کرتے تو ڈائریکٹ اعتراض تھا. تو لکھیے گا کہ سوال کرنا ایک چیز ہے, سوال کیا کیسے جا رہا ہے یہ دوسری چیز ہے. اچھا اعتراض فرشتوں نے کیا بظاہر, آگے آپ پڑھیں گے جا کے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. سوال کیا فرشتوں نے بھی تھا اور شیطان نے بھی کیا تھا, دونوں میں فرق کس کا تھا؟ بلکہ مزے کی بات دیکھیے گا کہ فرشتوں نے لمبا سوال کھولا ہے, اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا آیت کے اوپر نظر رکھیں تو دو الزام نہیں لگائے انسان پہ فرشتوں نے, اپنی زبان میں سمجھیں, جبکہ بچارہ شیطان, جس کو ہم بچارہ کہتے ہیں, ابلیس شریر, وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے صرف انسان کے اوپر ایک اعتراض کیا کہ اس کو تم نے مٹی سے بنایا. خلق تو امین تھی, نہ شیطان نے انسان کو فسادی کا, نہ خون بہانے والا کا, تو بیچارے ابلیس کا تو بڑا انوسنٹ قسم کا سوال تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دونوں پہ رویہ کیا, فرشتوں کو بات کی, دیٹس اٹ, انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرشتوں کے اس لمبے اعتراض کا جواب کس میں دیا؟ یہاں سے ایک استادوں کے لیے ایک عمل ہے, لمبے سوال کا جواب چھوٹا سا دو, آنے والا وقت خود ہی بتا دے گا کہ اس کا جواب کیا تھا. بس استاد پڑھا رہا ہے لیسن نمبر چار, शागिर्द सवाल ऐसा करता है जिसका जवाब 8 नंबर लेसन में आना है, तो उस्ताद क्या कह सकते हैं, इन्नी आलमुम आला तालमुन, कि आगे जाके तुम्हें भी पता लग जाएगा। तो इब्लीस ने इंसान पे कोई बहुत बड़े इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, लेकिन फ़र्क पता किस चीज़ का था, टोन, तकबर। यहाँ आप वो हदीस भी कोट करें, नबी सल्लम ने फरमाया जिसके दिल में एक जर्रा बराबर तकबर होगा, किबर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फरिश्तों के इस जवाब में तकबर नहीं दिख रहा, हिकमत मालूम करना दिख रहा है, जबकि इबलीस के जवाब में खलकता हु मिन तीन और खलकता नी मिन नार, इसमें किबर दिख रहा है। यानी इबलीस इस हदीस का मुंह बोलता सबूत है कि जिस दिल में एक जर्रा बराबर बड़ाई होगी ना, मुझे बड़ा मानो, आखिर मैं भी तो कुछ, ऐसे अपने कंधे उचका के कोई मेरी भी तो तारीफ कर दे ना, कभी मुझे भी तो एडमायर किया करें कभी कुछ, तो ये इबलीसियत है। समझ आ गई ये बात, तो ठीक है, नहीं आई तो इंशाल्लाह आगे जाके आएगी। एक स्लॉट पूरा हुआ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखा और इधर ये भी सिखा दिया कि इंसान की तख्लीक का मकसद तस्खीर कायनात है। इन्नी आलमुम आला तालमुन क्या है, लिख लें अभी से। फरिश्तों को क्या पता नहीं था जो अल्लाह को पता था, वो ये था कि इस दुनिया में अल्लाह के क्रिएशन प्लान को इंसान फॉलो करेगा। खुद तस्बीह करना क्या मुश्किल है, वल्लाही मैं तो कहती हूँ बड़े मज़े में वो लोग जो घर बैठ के तस्बीह नमाजें पढ़ते हैं, बड़े मज़े में जो रोज़ रोज़ा रख लेते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, क्या मुश्किल है, आदत बन जाए, जब आदत बन जाए तो इबादत मुश्किल ही नहीं लगती, इबादत और आदत में फ़र्क होता है। बहरहाल सबसे मुश्किल है इस कायनात पे अल्लाह के पैगाम को नाफिज कराना। अब उसकी तैयारी हो रही है, अब ज़रा साथ ही चलिए, देखिए जाइलुन फिल अर्दी, ये जुमला कब बोला अल्लाह ने, जब अभी आदम को पैदा करने लगे हैं। क्या अभी आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल चखा, खाया कुछ, शैतान ने बहकाया, तो अल्लाह ने तो पहले ही कह दिया, नहीं समझे। मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ, ये भी मैंने किसी की सुनी तो मुझे अच्छी लगी उनकी मिसाल। आप देखिए कि मिसाल है, कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें 10 वर्कर्स हैं, काम करते हैं लोग। तो जो इदारे का बड़ा मैनेजर है, या आप उसको शेफ़ बोलते हैं ना, इधर शेफ़ है, वो क्या कहता है, एक ईमेल भेजता है उन 10 में से किसी एक के बारे में, 9 को भेजता है, और वो कहता है कि हमने फैसला किया, मिसाल है ब्रदर अहमद है, तो हम कहते हैं कि ये ईमेल आप सबको इन्फॉर्म कराने के लिए कि हम ब्रदर अहमद को ले ऑफ कर रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं और अब वो नेक्स्ट मंथ से हमारे साथ नहीं होंगे। अच्छा, वो 9 लोगों को गई लेकिन अहमद को नहीं गई, तो सबको पता चल गया ना लेकिन अहमद को नहीं पता। अब क्या हुआ, शाम को उसी समझे कि वर्किंग टीम के अंदर एक ब्रदर मोहम्मद है, मोहम्मद साहब की मुलाकात होगी अहमद साहब से। अब मोहम्मद को नहीं पता कि अहमद को भी कुछ नहीं पता, तो वो कहते हैं कि यार बहुत दिल उदास हो जाएगा, तुमने क्या किया, क्या हुआ, क्यों भाई क्या हुआ, कहते तुम्हें नहीं पता, वो शेफ की ईमेल आई है कि वो तुम्हें फायर कर रहे हैं और अगले महीने तुम चले जाओगे। अच्छा मुझे तो नहीं पता। खैर वो ब्रदर अहमद जो थे वो कहते हैं ठीक है, ये इन्होंने कही होगी मुझे तो नहीं पता। वो अगले दिन तैयार होकर अपने काम पे पहुंचते हैं, गाड़ी रोड में स्टक होगी ट्रैफिक में, 5 मिनट लेट हो गए, ऊपर के शेफ था उसको देख के कहता है 5 मिनट लेट आए हो, जाओ मैं तुम्हें फायर करता हूँ, यू कैंट लिव हेयर। अच्छा अब आप इमेजिन कीजिए कि वो ब्रदर अहमद, जिनको ब्रदर मोहम्मद के जरिए खबर मिल चुकी थी कि फैसला तो पहले ही हो गया था मुझे निकालने का, तो ये मेरा 5 मिनट आना लेट तो बहाना बना, बात समझ गया। तो वो दिल में क्या सोचेगा कि ओहो ये जनाब आप ये मजाक कर रहे हैं, ये ड्रामा है मेरे सामने, आप तो कल ही डिसाइड कर चुके थे कि आपने मुझे निकालना है, किधर है। वो कहता है ये देखो ब्रदर मोहम्मद ने मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दी थी, बात समझ आ गई स्नैरियो। अब यहाँ देखे, अभी आदम को बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, प्लानिंग है ही जमीन के लिए थी। तो फिर आदम ने वो फल चखना और इब्लीस का बहकाना और अम्मा हवा पे इल्ज़ाम लगना, ये तो बाद की बातें थी। कई लोग नौजबिल्ला सुम्मा नौजबिल्ला कहते हैं दिस इज अ मेड अप स्टोरी, ये पहले से सारी प्लानिंग थी, और आदम बेचारे और इब्लीस तो बेचारा वैसे ही, उसका तो मुंह चूमने को दिल करता लोगों का, उसको पता नहीं क्यों बुरा कहते हैं, ये तो अल्लाह ने पहले से बनाया हुआ था। बात समझ गए? यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना ताला ने बनाया ही जमीन के लिए था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर इसको फिर आयत पे आइएगा तो आपको फिर समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने ये बात कही थी, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल जन्नती खलीफा। अर्ज के लफ्ज को जन्नत से बदलिए, नहीं कहा ना? तो पैदा फिर जन्नत में क्यों किया? पहले ही आदम को दुनिया में डाल देते हैं? नहीं, देखिए आप कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं ना किसी के साथ, तो वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, पहले आपको ड्रीम दिखाता है। मिसाल है कि आपने एक बिल्डिंग बहुत सी बड़ी बनानी है, तो वो आर्किटेक्चर के जरिए एक नक्शा बना के आपके सामने रखता है, कहते हैं इधर आए, देखिए हमें एक बड़ा सा इदारा बनाना चाहिए, हमारी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये है वो है। तो वो क्या होगा? तो कहते हैं इधर आ, ये देखे सर, ये देखे मैंने एक पूरा प्लान बनवा लिया है, ये ऐसा होगा। अच्छा जब वो ओनर है या शेफ है वो ये देख लेगा, वो कहेगा वाकई मैनेजर की बात से, अच्छा ये होगा, ऐसा होगा, चलो लेट डू इट, वी विल स्टार्ट दिस। समझ गया ना? आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई गई गोल सेटिंग के लिए। ये हमारे दीन का एक बड़ा खूबसूरत मिजाज है। पहले दिन का एक दिन सिरातल मुस्तकीम, गोल सेट किए बगैर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इफ यू डोंट हैव एनी गोल, यू विल नेवर प्ले अ रोल। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा रोल, सीधी सी बात है। ये हम अपनी नेकियों पे जम क्यों नहीं पाते भला? हर दो चार दिन के बाद फिर हमें एक पुशअप पीछे से क्यों चाहिए होता है? गोल कोई नहीं है, गोल को आप बॉल समझिए। एक बॉल 10 खिलाड़ियों को सारे प्ले ग्राउंड में भगवाता है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बॉल होता है ना, आप उस बॉल को एक ग्राउंड में से गायब करा दें तो क्या होगा? वो इतना भागेंगे, वो कहेंगे किधर भागे? तो सबसे बड़ी चीज गोल सेटिंग है। खिलाफत का मुकाम उसको मिलेगा, बड़ा वो बनेगा। किसी जगह भी अल्लाह उसका नाम रखे ना करे, उसका नाम होगा जिसका कोई गोल होगा। दुनिया में फुटबॉल के पीछे खेलने वाले खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन फुटबॉल का एक गोल बना के देने वाले बहुत कम लोग हैं। बस अब हमें दुनिया में चंद चेहरे चमकते फुदकते हुए दिखते हैं, हालांकि दुनिया में आज लाखों ऐसे लोग हैं जमीन पर उनको कोई जानता भी नहीं, आसमानों में उनके नाम की खबरें हैं, उनकी शोहरत है। तो जिंदगी में से जो दिन रह गए हैं ना, बी फोकस्ड, फोकस्ड। अच्छा मिसाल है, एक गेंद है उसके पीछे 10 लोग भाग रहे हैं। मुझे नहीं पता वैसे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक वक्त में, किसी को पता है तो बता दे, मैं तसी कर लूँ। 11 होते हैं, वो कहते हैं एक बेचारा गेंद, तो 11 लोग उसके पीछे बैठे हैं, तो वो बाहर ऑडियंस में से बैठे बैठे एक और गेंद वहीं फेंक दे कि बेचारे एक के पीछे जो, तो 2 गेंद दे देते हैं, आधे उसके पीछे भागे आधे उसके पीछे भागे, तो क्या होगा? ये है आज इन नसायकुम लशत्ता, कुरान कहता है लोगो तुम्हारी कोशिशें बिखरी हुई हैं, पता ही नहीं तुमने जाना किधर है, तुमने जिंदगी में अचीव क्या करना है। एक गोल मिल गया, लग जाओ तजर्बे करते रहोगे सारी उम्र, कभी इधर के कभी इधर के, कभी ये करोगे वो करोगे। तो यहां अल्लाह सुबहाना तला ने इन्नी जाइलुन फिल जन्नत ही खलीफा नहीं कहा, लेकिन जन्नत में भेजा क्यों? ताकि आदम अपनी आंखों से देख ले। अब यहां से अगली आयत की थोड़ी सी तमहीद बना दूं। आदम अली सलाम एक सिंबल है, यानी सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली क्या होता है? अलामती तौर पे, सिंबल कहते हैं अलामत को, पूरी ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीज, अनार का बीज है ना, तो असल में एक पूरे दरख्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यस नो? कोई कहता है मैंने कभी अनार देखा ही नहीं, आप इमेजिन करें ना दुनिया को कोई ऐसा खिता है जहां कोई अनार नहीं होता, तो कोई वहां जाके अनार दाना आपको देता है या अनार का बीज देता है, कहता है तुम्हें पता है ये जब बड़ा होगा ना तो ये इतना बड़ा सुर्ख होगा, फिर इसके अंदर रेड कलर के मोतियों की तरह के दाने होंगे, बीच में ऑफ वाइट कलर का बड़ा कड़वा सा लेकिन बड़ा नरम गूदा होगा, बाहर एक खाल होगी। तो कहता है मेरे तो इमेजिनेशन में नहीं आ रहा। तो आप क्या कहते हैं? अच्छा ठहरो, इस बीज को जमीन में डाल दो, जब जमीन में डालेंगे चले साल दो साल जितना भी इंतजार करेगा, एक दिन वो अनार का फल निकल आएगा ना। आदम अलैहिस्सलाम को आप कह लीजिए कि वो बीज है जहां से आज इंसानियत के सारे उलूम और रवैये और सारी चीजें फूट रही हैं। اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں